हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। और हमने इस चैप्टर के लगभग 80% पोर्शन को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि राजस्थान के जन नायकों में कैसे बापा रावल का कंट्रीब्यूशन है, या फिर हम क्यों पृथ्वीराज चौहान को एक जन नायक यानी हीरो मानते हैं, और वैसे ही महाराणा सांगा, मीराबाई और पन्ना धाय में इन सभी में क्या सिमिलैरिटीज थी जिसकी वजह से हम इन सभी को जन नायक मानते हैं, हीरो मानते हैं। और जन नायकों के अलावा हमने देखा कि कैसे राजस्थान में लोक देवता पूजे जाते हैं, जाना कि कैसे देवता जो हैं वो लोक देवता से डिफरेंट होते हैं, और गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, देव नारायण जी इत्यादि जैसे लोगों के जीवन को समझा जाना कि कैसे ये सभी लोक देवता बने। और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपने समाज सुधारकों को पढ़ना, और समाज सुधारक वाली लिस्ट में हमने अभी तक केवल एक समाज सुधारक को देखा जिनका नाम था संत पीपा जी। और इसी सीरीज में आज हम देखेंगे एक और समाज सुधारक यानी सोशल रिफॉर्मर को, जिनका नाम है जांबो जी, जो कि आपकी किताब में पेज नंबर 74 पर दिया हुआ है। तो चलिए आप फटाफट से पेज नंबर 74 ओपन करिए और इसमें सेकेंड पॉइंट यानी जांबो जी पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है, जांबो जी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म विक्रम संहिता 1508 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को नागौर जिले के पीपासर गांव में पमवार लोह तजी और हांसा देवी के यहां पर हुआ था। लगभग 20 वर्ष तक पशु चराने का कार्य किया और उसके बाद संन्यास ग्रहण किया और विक्रम संहिता 1593 में देह त्याग किया। विक्रम संहिता 1542 में इन्होंने कार्तिक कृष्णा अष्टमी पर संभ्रातल नामक स्थान पर प्रथम पीठ स्थापित करके विश्नोई समाज का प्रवर्तन किया। शासक वर्ग व विशिष्ट वर्ग दोनों इनसे प्रभावित थे। जांबो जी के सिद्धांत लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे। जांबो जी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों के पालन करने पर जोर दिया। विश्नोई नाम भी 29 अंकों में 20-9 के आधार पर ही दिया। जांबो जी शांति प्रिय, सहृदयी, साग्राही, समन्वयकारी, उदार चिंतक, मानव धर्म के पोषक, पर्यावरण के संरक्षक व हिंदू मुसलमानों में एकता व सामंजस्य के समर्थक थे। अकाल के समय जांबो जी ने सामान्य जन की सहायता की थी। उन्होंने बताया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। सम्राथल के पास मुकाम नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार जांबो जी का मेला लगता है। जांबो जी के चारित्रिक पवित्रता और मूलभूत मानवीय गुणों पर बल दिया। इनके वचनों का सामूहिक नाम शब्दवाणी है। जांबो जी की शिक्षाओं के कारण ही विश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा, पेड़ों की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है। इसका मतलब कि हमने अभी जिनके बारे में रीड किया वो एक समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज कल्याणकारी यानी सोशल वेलफेयर में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। इसके साथ साथ वो एक मानव धर्म के पोषक थे यानी ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते थे, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टर थे, प्लस हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी को प्रमोट करते थे। इसका मतलब कि ये जात पात धर्म से उठ करके अपने विचारों को सबके सामने रखते थे। जांबो जी को एक कम्युनिटी का एस्टेब्लिशर माना जाता है। उस कम्युनिटी का नाम है विश्नोई समुदाय संप्रदाय, या इंग्लिश में हम इसको कम्युनिटी कहते हैं। और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इनका जन्म लगभग 16th सेंचुरी में हुआ था। यहाँ पर विक्रम संहिता के अनुसार 1508 लिखा है, लेकिन अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो इनका जन्म 1451 में हुआ था। अब आपको सोचना ये है कि एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट कि 15th सेंचुरी में कौन से रूलर का रूल था हमारे इंडिया पर और स्पेसिफिकली आपके राजस्थान पर। तो चलिए, जांबो जी का जन्म हमने देखा कि 1451 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था। कहां पर? तो नागौर जिले के पीपासर गांव में पवार लोहटा जी और हंसा देवी के घर पर। इसका मतलब इनके पिताजी का नाम क्या था? पवार लोहटा जी, और इनकी माता का नाम था हंसा देवी। ये पहले पशु चराते थे, यानी इनका जो जीवन था वो एक पेस्टोरलिस्ट के जीवन के जैसा था। लगभग इन्होंने 20 इयर्स तक पेस्टोरल एक्टिविटी जो है कंटिन्यू की, यानी पशु चराया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। यानी सन्यास का मतलब ये कि अपने परिवार को त्याग करके, बाहरी दुनिया की मोह माया को त्याग करके ऐसा जीवन जीना जहां पर तुम्हारे लिए सब बराबर हो, सादा विचार रखना, सादा भोजन करना, ये सब सन्यासी जीवन के लक्षण हैं। तो उन्होंने 20 साल तक क्या किया? पशु चराया, इसके बाद सन्यास ले लिया। और 1593, ये हम विक्रम संहिता कैलेंडर की बात कर रहे हैं, 1593 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन 1542 यानी विक्रम संहिता 1542 के अकॉर्डिंग 1542 के अकॉर्डिंग इन्होंने कार्तिक कृष्णा अष्टमी यानी कार्तिक का महीना, कृष्णा अष्टमी का दिन, इस दिन पर एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया अपने समाज में, एक पीठ स्थापित करके, और इसको विश्नोई कम्युनिटी का प्रवर्तन माना जाता है। जो रूलर था यानी वो वर्ग जो कि रूल करता था, और उसके साथ साथ विशिष्ट वर्ग यानी जो एलीट क्लास थी वो सभी इनसे बहुत इफेक्टेड थे। इनके जो सिद्धांत थे यानी जो इनकी मोरल वैल्यूज थी, जो इनकी पॉलिसीज थी, वो लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे। यानी ये लोगों को बताते थे कि लोगों को अपने डेली रूटीन में कैसी एक्टिविटीज जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को 29 रूल्स बताए थे जो कि उनको फॉलो करने थे, और इसी 29 के अराउंड विश्नोई कम्युनिटी का जो नाम है विश्नोई ये भी रिवॉल्व करता है। 29 को हम हिंदी में 29 कहते हैं, और 20 में से जब आप 9 घटाएंगे तो इसका जो मतलब होगा उसको इन्होंने विश्नोई कहा है, यानी विश माइनस नोई। और ऐसे ही इन्होंने विश्नोई कम्युनिटी नाम का जो है खोज किया था। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ह्यूमन वेलफेयर पर बहुत फोकस किया, साथ ही साथ इन्होंने एनवायरमेंट पर भी बहुत फोकस किया। इनका नेचर माना जाता है कि ये लिबरल थे, बहुत पीसफुल थे, और इसीलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को भी सपोर्ट किया था। एक बार अकाल पड़ा यानी कि फेमिन आया, और उस फेमाइन में बच्चों इन्होंने जो जनरल पीपल थे, कॉमन लोग थे जिनको हम हिंदी में सामान्य जन कहते हैं, उनकी बहुत मदद की। उन्होंने बताया कि भगवान से जुड़ने के लिए कोई सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि उन्होंने खुद तो सन्यास लिया, लेकिन उनको जरूर ये रियलाइज हुआ होगा कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी सन्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों उस टाइम पर भक्ति मूवमेंट बहुत जोरों पर था। बहुत ऐसे भक्ति फिलोसोफर्स निकल के आए जिन्होंने ये बताया कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी तपस्या या किसी सन्यास की जरूरत नहीं है, और जांभो जी भी उनमें से एक थे। बच्चों इनके मरने के बाद जो इनकी अस्थली बनाई गई, जिसको हम सम्राथल के पास मुकाम नामक स्थान कहते हैं, वहां पर ईयरली 2 बार मेला लगता है, यानी बहुत बड़ा सा फेयर लगता है, जो कि हम इनके लिए याद करते हैं, यानी जांभो जी को याद करते हैं, और उनके याद में ये मेला लगता है। इन्होंने बहुत पवित्र कैरेक्टर पर यानी कि प्यूरिटी पर फोकस किया, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखने पर, प्योर रखने पर फोकस किया। इन्होंने पीसफुल जो लाइवलीहुड है उस पर भी बहुत फोकस किया। इसके अलावा सादा जीवन, उच्च विचार इनकी हमेशा से ही टीचिंग्स रही हैं। इसके अलावा इन्होंने पर्यावरण की रक्षा यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे काम किए। जो लोग पेड़ों को काटते थे उनके अगेंस्ट आवाज उठाई, जो लोग पेड़ों की रक्षा करते थे उनको बहुत प्रोत्साहन दिया। तो ये सभी काम हमने देखा कि जांभो जी ने अपनी जीवन काल में किया था, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको जांभो जी की कोई पिक्चर देखनी है तो आप पेज नंबर 74 पर ही दिया गया एक पिक्चर जिसमें एक सेंटा क्लॉस की तरह आदमी रेड कलर का कपड़ा पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। ये कोई सेंटा क्लॉस नहीं बल्कि हमारे जांभो जी हैं, जिनको हम सोशल रिफॉर्मर के तौर पर याद करते हैं। और इनके अलावा हम एक और नाम जानते हैं, जसनाथ। चलिए हम देखते हैं कि जसनाथ इन्होंने क्या काम किया सोसाइटी में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो पेज नंबर 74 पर ही पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, राजस्थान के समाज सुधारकों में जसनाथ का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विक्रम संहिता 1539 में कतरियासर में जसनाथ जी का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया एवं गोरख मालिया में कठोर तप किया। विक्रम संहिता 1563 में इन्होंने समाधि ली। भक्तिकालीन अन्य संतों की भांति जसनाथ ने भी समाज में प्रचलित रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने निर्गुण और निराकार भक्ति पर बल दिया, जातिवाद का खंडन किया, संयम एवं सदाचार पर विशेष बल दिया। उन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया। जसनाथ ने जसनाथी संप्रदाय की शुरुआत की। जसनाथ ने अपने संप्रदाय के 36 नियमों का प्रतिपादन किया। रात्रि जागरण के समय अग्नि नित्य जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने प्रेम भक्ति एवं समन्वय की भावना से समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। तो अभी हमने जिनके बारे में रीड किया, यानी जसनाथ, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और सोशल रिफॉर्मेशन के सेक्टर में इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका अगर हम जन्म देखें तो वो विक्रम संहिता के कैलेंडर के अकॉर्डिंग कतरियासर यानी बीकानेर में हुआ था 1539 में। और इन्होंने भी अन्य सुधारकों की तरह बिल्कुल कम एज में संन्यास ले लिया, यानी जब वो केवल 12 इयर्स के थे तो वो संन्यास पर चले गए। उन्होंने एक ऐसा जीवन जीना शुरू कर दिया जहां पर दुनिया से अलग रहने लगे, तपस्या करने लगे। इन्होंने तपस्या कहाँ की, तो वो तपस्या किया उन्होंने गोरख मालिया में। कब? 1563 में इन्होंने समाधि भी ले लिया। इसका मतलब कि इनकी डेथ कब हुई थी, विक्रम संहिता के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1563 में। अब हम इनको क्योंकि समाज सुधारक कहते हैं यानी सोशल रिफॉर्मर कहते हैं, तो जरूर इन्होंने भी बाकी सारे सोशल रिफॉर्मर्स की तरह कुछ एक ऐसा काम किया होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी क्वालिटीज भी उनके जैसी ही रही होंगी, सिमिलर बिल्कुल रही होंगी। और इसीलिए माना जाता है कि इन्होंने भी जो प्रचलित रूढ़ियां थी, पाखंड थे, इनका विरोध किया, यानी जो ऑर्थोडॉक्सी थी उसके अगेंस्ट बहुत काम किया। इन्होंने भी निर्गुण और निराकार भक्ति पर बल दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि उस समय भक्ति मूवमेंट बिल्कुल अपने पीक पर था, और भक्ति मूवमेंट में जो लोग थे जो कि सोशल रिफॉर्मर माने गए, संत महात्मा माने गए, वो जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते थे। एक वो जो कि भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे, जिनको हम हिंदी में सगुण कहते हैं, और दूसरे वो जो कि भगवान को आत्मा से मानते थे, उनके किसी भी रूप पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि जिनको हम निर्गुण कहते हैं या फिर निराकार कहते हैं। तो हमने इससे पहले देखा कि मीरा जो थी वो एक सगुण उपासक थी, यानी वो कृष्णा जी की मूर्ति की पूजा करती थी। लेकिन जो कबीर थे, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, वो एक निर्गुण थे, यानी उनके अकॉर्डिंग कोई भगवान का रूप नहीं है। और वैसे ही इन जसनाथ जी के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 74 पर, ये भी निर्गुण भगवान को मानते थे, यानी भगवान का कोई रूप, रंग या आकार नहीं है। इन्होंने भी जातिवाद का खंडन किया, यानी जो कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट गए, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। इन्होंने संयम और सदाचार पर विशेष बल दिया। संयम यानी कि जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, और आज हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि कैसे आज की जेनरेशन में लोगों के अंदर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है, जिसको हम संयम कहते हैं, धैर्य कहते हैं। ये सभी एक ही चीज को शो करते हैं कि हमारे अंदर सहने की क्षमता नहीं है। तो इन्होंने सहने की क्षमता यानी संयम, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, इस पर बहुत फोकस किया। इसके साथ साथ सदाचार यानी लिविंग अ सिंपल लाइफ इनका फंडा था। जैसे कि गांधी जी जो थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, लंदन में जाकर के पढ़ाई की, उसके बावजूद कभी भी उन्होंने बहुत शो ऑफ पर बिलीव नहीं किया। उनका मानना था कि अगर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है तो वो बिना कुछ अच्छा पहने भी अपना नाम कमा सकता है। और शायद यही कारण था कि हम उनको जब भी याद करते हैं या उनको इमेजिन करते हैं तो सिंपल वाइट धोती में ही वो हमको दिखते हैं, बड़ा बड़ा सा एक राउंड चश्मा लगा करके। तो ऐसी लाइफस्टाइल, जिसको हम सिंपल लाइफस्टाइल कह सके, जहां पर ज्यादा शो ऑफ नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है, इसको हम सदाचार कहते हैं। और जसनाथ जी ने एक और जो बात कही, जो कि बाकी सबसे सिमिलर थी, वो ये कि भगवान को पाने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो टाइम, उस टाइम पर बच्चों प्रचलन कुछ ऐसा था कि पंडित या फिर इस्लाम में जो मौलवी हुआ करते थे, ये लोग आम जनता को अक्सर लूट लिया करते थे कि ये भगवान से उनका कांटेक्ट करवाएंगे। और जसनाथ जी ने बाकी भक्ति संतों की तरह इस बात का खंडन किया, यानी गॉड और इंसान के बीच में जो मीडिएटर है उसको क्रिटिसाइज किया। इसके साथ साथ जसनाथ जी ने भी बाकियों की तरह एक कम्युनिटी की स्टार्टिंग की, कम्युनिटी एस्टेब्लिश किया, जिसको हम जसनाथी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और उन्होंने इस संप्रदाय में 36 नियम बताए, और इसीलिए माना जाता है कि उन्होंने प्रेम भक्ति यानी पीसफुल लिविंग पर भी बहुत फोकस किया, साथ ही साथ समन्वय की भावना, जिसको हम फीलिंग ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, इस पर फोकस किया। और अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जसनाथ जी ने जातिवाद का खंडन किया, पीसफुल लिविंग पर फोकस किया, सिंपल वे ऑफ लिविंग पर फोकस किया, और इनके जो 36 नियम थे, रूल्स थे, वो इनकी कम्युनिटी, जिसका नाम जसनाथी संप्रदाय था, इसके लिए बनाया था। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर फिनिश होता है। चलिए देखते हैं कि 4th नंबर पर हमारे अगले सोशल रिफॉर्मर कौन है। तो पेज नंबर 74 पर पॉइंट नंबर 4 में लिखा है दादू दयाल, जिसके अंडर लिखा है दादू दयाल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका जन्म विक्रम संहिता 1601 में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ था। पूर्व में इनका नाम महाबली था। पत्नी की मृत्यु के बाद ये सन्यासी बन गए। अधिकांशतया ये सांभर व आमेर में रहने लगे। फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट के बाद आप भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। राजस्थान में ये नारायणा में रहने लगे। 1603 ईस्वी में वहीं पर इन्होंने अपनी देह का त्याग किया। इनके 52 शिष्य थे। इनमें से रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल प्रमुख थे, जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षाएं जन जन तक फैलाई। इनकी शिक्षाएं दादूवाड़ी में संग्रहित हैं। दादू दयाल ने बहुत ही सरल भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। उनके अनुसार ब्रह्मा से ओकार की उत्पत्ति और ओमकार से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। माया के कारण ही आत्मा और परमात्मा के मध्य भेद होता है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यंत आवश्यक बताया। अच्छी संगीत, ईश्वर का स्मरण, अहंकार का त्याग, संयम एवं निर्भीक उपासना ही सच्चे साधन है। दादू ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक आडंबर, पाखंड एवं सामाजिक भेदभाव का खंडन किया है। जीवन में सादगी, सफलता और निश्चलता पर विशेष बल दिया है। सरल भाषा एवं विचारों के आधार पर दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। तो बच्चों, अभी हमने जिनके बारे में रीड किया, यानी दादू दयाल, ये बाकियों से थोड़ा हटकर थे। खैर, हमने जितना रीड किया इसमें आपने देखा कि इनका जन्म फागुन शुक्ला अष्टमी को अहमदाबाद में यानी गुजरात में हुआ था और पहले इनका नाम महाबली था। इनकी जब पत्नी मर गई थी उसके बाद ये सन्यासी बने और एक बार फतेहपुर सिकरी, जिसको हम अकबर के टाइम पीरियड के लिए जानते हैं, तो अकबर से भेंट करने के बाद इन्होंने अपनी फिलॉसफीज को पॉपुलराइज करना स्टार्ट कर दिया और जो इनकी शिक्षाएं थी यानी इनकी टीचिंग्स को हम दादूवाड़ी में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब कि दादूवाड़ी क्या है? तो कलेक्शन ऑफ हिज प्रीचिंग्स। दादू दयाल की प्रीचिंग्स का कलेक्शन हम दादूवाड़ी में देख सकते हैं। इन्होंने अपनी जो प्रीचिंग्स दी, अपने जो थिंकिंग को पॉपुलराइज किया, ये लोकल लैंग्वेज में किया और इनके अकॉर्डिंग ब्रह्मा से ओमकार की उत्पत्ति यानी आत्मा की जो ओरिजिन है, सोल का ओरिजिन 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और हमारे अंदर जो माया है यानी जो फीलिंग्स है, इसके कारण ही आत्मा यानी हम और परमात्मा यानी भगवान, इनके बीच में डिफरेंस रह जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ये माना बच्चों कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना जरूरी है। यानी इफ यू वॉन्ट टू अटेन पीस और इफ यू वॉन्ट टू अटेन सालवेशन इन फ्रंट ऑफ गॉड, यू नीड अ टीचर। और अभी तक हमने जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स देखे, तो ध्यान से सुनिएगा, उन सभी ने ये कहा कि भगवान से मिलने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन दादू दयाल के नियति से गुरु की जरूरत पड़ती है जब आप भगवान से, ईश्वर से मिलन करना चाहते हैं। इन्होंने म्यूजिक पर फोकस किया, इन्होंने मेडिटेशन पर फोकस किया, इन्होंने ईगो को खत्म करने और टॉलरेंस को प्रैक्टिस करने पर बिलीव किया और इसीलिए हम मानते हैं कि इनकी जो थिंकिंग थी, इनकी जो शिक्षाएं थी, टीचिंग्स थी, वो आम जनता तक यानी कॉमन पीपल तक बिना किसी रोक टोक के फैल पाए, क्योंकि इन्होंने अपनी टीचिंग्स को लोकल लैंग्वेज में स्प्रेड किया था। और ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन दादू दयाल जी पर। और इसी के साथ बच्चों आज की हमारी ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।